हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का नंदगांव में स्वागत है। आज हमारे बीच एक और वक्ता आए हैं जो कि दो दिन लेट आए हैं, हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु। तो नंदगांव के विषय में और यहाँ के लीला स्थलियों के विषय में आज वो हमको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो उससे पूर्व मुझसे निवेदन किया गया है कि क्योंकि आज दिवाली है और दामोदर लीला का एनिवर्सरी है, तो इस उपलक्ष पर दामोदर लीला हम चर्चा करेंगे। तो दामोदर अष्टक जो कि सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है, उस पर सनातन गोस्वामी पाद ने टीका लिखी, तो उसके आधार पर हम दामोदर अष्टक पर चर्चा करेंगे। इन 8 श्लोकों पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सत्यव्रत मुनि ने ये बहुत सुंदर रचना पद्म पुराण में आई है और इसके 8 श्लोक बहुत सुंदर प्रकार से रचना की गई है और वर्णन आता है कि इस जो कंपोजिशन है, मीटर है, इसको भुजंग प्रायता कहते हैं। भुजंग प्रायता अर्थात ये सर्प की तरह चलता है, जैसे सर्प सीधा नहीं जाता, ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरह से जो श्लोकों की रचना की गई है तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से वो कभी स्वर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। तो बहुत ही विशेष रचना है ये और इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या। नमामि, प्रणाम कर रहे हैं सर्वप्रथम ईश्वरम। तो क्योंकि इन श्लोकों में दामोदर लीला की चर्चा की गई है, भगवान श्री कृष्ण एक नन्हे से शिशु के रूप में अपनी मां के साथ लीला क्रीड़ा करते हैं, तो नन्हे से शिशु के रूप में जो लीला करते हैं उसको देखकर सामान्य व्यक्ति भ्रमित हो सकता है या कृष्ण की भगवत्ता के विषय में किसी को संशय आ सकता है या कोई व्यक्ति इन लीलाओं को सामान्य मान बैठे। तो भगवान श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को अतमानवीय घोषित करने हेतु सर्वप्रथम ईश्वर शब्द से संबोधित कर दिया है कि आगे के श्लोकों में देखोगे कि ये कृष्ण भयभीत होकर भागता है। कृष्ण दोनों हाथों से अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहते हुए रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये घबराते हुए रोते हुए व्यक्ति कौन है पहले से मैं बता देता हूं, ये ईश्वर है। इसलिए भयभीत होते हुए मां से डर कर मां के साथ शरारत करके वो भागा, मां पीछे पीछे भागी और वो डर के मां से भागा और फिर मां ने जब दंड देने का उनको भय दिखाया तो भयभीत होकर रोने लगे। ये सब सोच के हमको लगेगा मैं भी यही करता था अपने बचपन में, अच्छी बात है, मेरे बारे में तो नहीं है ये। तो पहले कहते नहीं जी, ईश्वरम, ये ईश्वर की चर्चा हो रही है यहां पर। और आगे भले कई ऐसे मुद्दे आएंगे जिससे लगेगा कि हमारे बचपन में भी कुछ ऐसे ही हमने वर्णन अपने जीवन में देखे थे, लेकिन उससे बहुत भिन्न है ये। तो इसलिए यशोदा भियोलुखा भयभीत होकर भागे, लेकिन ईश्वर है। रुदंतम मुहुर, रो रहे थे बार बार, लेकिन फिर भी ईश्वरम। तो आगे जो भी वर्णन आएगा उसके साथ ईश्वरम जोड़ना न भूले। अगर ईश्वरम जोड़ना भूल गए तो फिर कोई सामान्य व्यक्ति की लीला लगेगी। तो इसलिए आरंभ में कह दिया नमामि ईश्वरम, अर्थात संपूर्ण जगत तीनों लोकों की सभी शक्ति इनके वश में है, नमामि ईश्वरम। तो आगे मुख्य और गौण दो प्रकार के गुणों का वर्णन आ रहा है। किसी भी व्यक्ति का परिचय दिया जाता है तो सर्वप्रथम उनके मुख्य गुण बताए जाते हैं, फिर उनके गौण, मुख्य लक्षण और गौण लक्षण, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये ईश्वर कौन है? तो ईश्वर नाम सुनकर कई लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं भी ईश्वर हूं, मैं भी ईश्वर हूं, मेरा सरनेम ही ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है अगर इसका परिचय देना है तो मुख्य लक्षण समझना आवश्यक है, नमामि ईश्वरम। आगे सच्चिदानंद रूपम, ईश्वर कौन है उसकी परिभाषा क्या है? कि सर्वप्रथम सच्चित आनंद उसका रूप होना चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति अपने रूप के विषय में छल नहीं कर सकता, इसलिए सच्चित आनंद विग्रह, ये भगवान श्री कृष्ण का रूप ज्ञानघन चिदघन आनंदघन स्वरूप है। सिर से नख तक वो केवल आनंद चिन्मय रस से भरे हुए हैं, अर्थात ये कोई सामान्य इस जगत के मर्त्य जीव नहीं है। तो इस जगत का कोई भी व्यक्ति जो कि तीनों गुणों के अधीन है, इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं सच्चिदानंद हूं, संभव नहीं। इसलिए यहां पे सच्चित आनंद रूपम कह दिया है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हो सकता है। प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे, प्रवचन कर रहे थे और आरंभ में उन्होंने कह दिया कि कृष्णा इज ब्लैक, तो वहां पे लोग बहुत प्रसन्न हो गए, सब लोग खुश हो गए, हंसने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा नॉट लाइक यू, आपके जैसे नहीं, ये अलग प्रकार का रूप है, अलग प्रकार का रंग है, जो कि हम अपने बुद्धि से अपने सीमित मस्तिष्क से नहीं समझ सकते। इसलिए सच्चिद आनंद रूपम ये भगवान का श्याम सुंदर रूप है, ये इस जगत के हर प्रकार के रूप से भिन्न है। तो फिर आगे वर्णन आता है कि ये इनका मुख्य गुण है और साथ साथ इनका गौण लक्षण क्या है, सेकेंडरी। तो आगे फिर इनके रूप का और वर्णन करते हुए कह रहे हैं लसत कुंडलम, मुख्य गुण में एक और एक गुण जोड़ दिया है जो सच्चिदानंद रूप का और विस्तृत रूप से वर्णन करने के लिए, लसत कुंडलम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब लीला क्रीड़ा करते हैं तो उनके कुंडल उनके कानों से झूमते फिरते हैं। तो निरंतर झूमते हुए कुंडलों को लेकर कृष्ण यशोदा माई के साथ लीला कर रहे हैं, लसत कुंडल। तो कुंडल का अर्थ है वो आभूषण है। तो एक दृष्टि से देखा जाए आभूषण का प्रयोग कब करते हैं, क्यों किया जाता है? आभूषण का प्रयोग करते हैं अपने शरीर के किसी अंग को और विभूषित करने, उसके रूप लावण्य को और निखारने, इसलिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है। भले कान के कुंडल हो या हाथ के कंगन हो, जो भी हो, ये आभूषण का अर्थ है कि वह अपने सौंदर्य को बढ़ाए। तो लसत कुंडलम शब्द को देखकर कोई विचार कर सकता है कि कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना श्रेष्ठ नहीं कि आभूषण लगते हैं उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, इसलिए कृष्ण आभूषण पहनते हैं, लसत कुंडलम। तो वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में या दूसरे स्कंद में, यन्मर्त्य लीलोपैकुम स्वयोग परम पदम भूषणम भूषणांगम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सामान्य व्यक्ति जब आभूषण पहनता है, कुंडल धारण करता है, तो लोग कहते हैं अरे ये कुंडल से तुम्हारा मुख कितना चमक रहा है, आपके इस कंगन से आपका हाथ बहुत सुशोभित हो गया है, अर्थात आभूषण से शरीर का रूप बढ़ता है। लेकिन जहां वर्णन आ रहा है विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना श्रेष्ठ है, विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्दे अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो लावण्य है वो संपूर्ण लावण्य भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गया है, और भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर कोटि कोटि देवतागण और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी विस्मित हो जाते हैं। विस्मापनम स्वस्य च अर्थात ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य, ऐसा मिठास जिसको देखकर कृष्णा स्वयं विस्मित हो जाएं। विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्धे। तो उद्धव जी आगे कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के साथ अपना समय बिताया हूं, जीवन पर्यंत उनके साथ संवाद का अनुभव रहा है, अर्थात कृष्ण को मैंने निकट से देखा है और ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा, और कृष्ण को भी अपने सौंदर्य से विस्मित होते हुए मैंने साक्षात देखा है। तो उद्धव जी ने कृष्ण के साथ समय बिताया था इसलिए इस बात में उनकी दम है। परम पदम भूषण भूषणांगम, तो कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति जब कोई कंगन धारण करता है तो लोग कहते हैं कि अरे हाथ कितना सुंदर लग रहा है, कोई कान की बाली लगा ले कहेंगे अरे तुम्हारे कान कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण लसत कुंडलम अपने कानों में कुंडल धारण करते हैं तो उसको देखकर कोई भी व्यक्ति कुंडल को कहता है अरे कुंडल क्या कान धारण किया तुमने। परम पदम भूषण भूषणांगम अर्थात कृष्ण के दिव्य देह का प्रत्येक अंग भूषण के लिए भूषण बन जाता है, अर्थात जब कृष्ण के देह के संपर्क में कोई आभूषण आए तो कृष्ण के शरीर का वो अंग, वो दिव्य स्वरूप उस आभूषण को विभूषित करता है। इसलिए लसत कुंडलम अर्थात कृष्ण के कानों में कुंडल झूम रहा है लेकिन उस कुंडल से कृष्ण का सौंदर्य नहीं बढ़ रहा, कृष्ण के सौंदर्य से वो कुंडल का जीवन सार्थक हो गया है। लसत कुंडलम, उसी तरह कोई भी जीव कृष्ण के साथ जुड़ जाए तो कृष्ण को एक दृष्टि से किसी की आवश्यकता नहीं, वो आत्माराम है, परिपूर्ण है, आप्त काम है। लेकिन यदि हम कृष्ण के साथ जुड़ जाए, येन केन प्रकारेण सेवा में लग जाए तो हमारा जीवन भी विभूषित हो जाएगा कृष्ण के संपर्क में। तो इसलिए कृष्ण के संपर्क में जब जीवन आता है तो अपने आप जीवन सुधर जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए वर्णन आ रहा है लसत कुंडलम, तो भगवान श्री कृष्ण के कुंडल का वर्णन है। गोकुले भ्रजमानम, और गोकुल में भगवान लीला कर रहे हैं। तो गोकुल की विशेषता यह है कि यहां के सभी निवासी श्री कृष्ण को अपना केंद्र बनाकर लीला कर रहे हैं, उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की सेवा ही सर्वोपरि है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रजवासियों के नाना प्रकार की लीलाओं को देखकर प्रतीत होगा कि ये सामान्य है, घरेलू कार्य में लगे हैं, गो सेवा में लगे हैं, कृषि के कार्य में लगे हैं, ये कार्य जो सामान्य व्यक्ति इस जगत में लगा रहता है, इसमें कोई महान अंतर क्या है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं यावत रागादयस्तेना यावत कार गृहम गृहम यावत मोहंग्रिनिगड़ो तावत कृष्ण न तेजना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रजवासियों की लीला को देखकर कोई सामान्य व्यक्ति जो अल्पज्ञ है, जिसकी मस्तिष्क तीव्र नहीं है, वो मात खा जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा जी स्वयं हो गए थे। और वो कह रहे हैं कि वास्तव में ब्रजवासियों का जीवन एक दृष्टि से सामान्य दिखता है, लेकिन अंतर यह है कि कृष्ण है। तो इसलिए कह रहे हैं, यदि हमारे जीवन में कृष्ण न हो, यावत रागादयस्ते ना, तो हमारी कई कई इच्छाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। तो ये इच्छाएं स्तेनाह अर्थात बिना कृष्ण के ये इच्छाएं चोर का रूप धारण कर लेती हैं, अर्थात हमारे चेतना को चुरा लेती हैं, हमारी श्रद्धा हमारी चैन को चुरा लेती हैं। इसको कहते हैं यावत रागादय स्तेनाह। इसलिए कृष्ण यदि केंद्र में न हो तो अवस्था ये होती है, यावत कार गृहम गृहम, और जिस घर में हम हो और वहां कृष्ण नहीं हो तो वो गृहम या घर क्या बन जाता है, कार गृहम। कार गृहम अर्थात जेल, कारागृह। यावत कार गृहम गृहम, यदि कृष्ण घर के केंद्र बिंदु न हो, घर के नाना प्रकार की गतिविधियां कृष्ण के संबंध में न हो, तो वो गृहम कार गृहम बन जाता है। लेकिन कलयुग में लोगों को लगता है कि घर में कार आ गया तो कार गृहम हो गया, तो ये पर्याप्त है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण को लाने की क्या आवश्यकता। यावत मोहोंग्री निगड़ो, और घर है, सत्ता है, पारिवारिक जीवन चल रहा है, और व्यक्ति को लगता है कि मैं यहां का राजा हूं, अर्थात सब कुछ मेरे देखरेख में संचालन हो रहा है, तो इस मोह के वशीभूत व्यक्ति बंध जाता है। इसलिए इसको यहां पर वर्णन किया गया है निगड़ो। निगड़ो अर्थात बेड़ियां, जंजीर। तो ये मोह की भावना बेड़ियों के तुल्य है जो व्यक्ति को पूरी तरह बांध देती है। ऐसे कारागृह में तावत कृष्ण न तेजना, यदि कृष्ण के साथ हमारा संबंध न होगा तो जीवन की अवस्था कुछ ऐसी ही होगी। इसलिए प्रभुपाद के पास एक बहुत बड़े उद्योगपति आके अपने जीवन की व्यथा सुनाने लगे कि स्वामी जी, मेरा यहां पर बहुत बड़ा एक फैक्ट्री है जयपुर में, एक फैक्ट्री दिल्ली में है, एक फैक्ट्री यहां पर है, बहुत सारे फैक्ट्री अलग अलग जगह है, लेकिन प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती मेरे को, इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा सब फैक्ट्री हमको दे दो और आराम से सो जाओ। तो बोला मैं बाद में आता हूं। प्रभुपाद ने कहा इसका एड्रेस ले लो। तो बोला स्वामी जी आपका एड्रेस मेरे पास है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद ने कहा हमको भी चाहिए जैसे हम आपके पास आ सकें। और वो व्यक्ति जाने के बाद प्रभुपाद बाकी शिष्यों को कहने लगे कितना मोह है इसका, उसको लगता है कि जितना अधिक मैं बटोरता चला जाऊंगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वास्तव में सुख चैन और शांति और धन के साथ कोई संबंध नहीं है, आवश्यक है जीवन व्यापन के लिए, लेकिन सुख और चैन इसका सूत्र कृष्ण के साथ है। इसलिए यावत कृष्ण न तेजना, जब तक कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं, शांति नहीं। और इसलिए गोकुले भ्रजमानम, गोकुल के सारे निवासी निरंतर आनंद में रहते थे क्योंकि उनके जीवन के गतिविधियों के प्रत्येक पहलू में कृष्ण ही प्रधानभूत थे, अर्थात कृष्ण को ही केंद्र मानकर वो अपने जीवन के सारे कार्य करते थे। तो नाना प्रकार के उत्पात भी असुर मचाते तो सर्वप्रथम वो कृष्ण का ही आश्रय लेते। इसलिए गोकुले ब्रजमानम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि गोकुल के निवासियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे मैं अपने घर को भी गोकुल में परिवर्तित कर सकता हूं, वृंदावन में परिवर्तित कर सकता हूं, यदि घर में केंद्र कृष्ण हो। गोकुले भ्राजमानम, इसलिए भवन शब्द का अर्थ है कि जहां भगवान हो, भगवान जहां हो वो भवन, और यदि भगवान न हो और भ हटा दो तो बचता है वन। इसलिए पशुतुल्य जीवन से उठना हो तो कृष्ण को केंद्र में रखना है। तो यहां ब्रज के सारे निवासी निरंतर कृष्ण के साथ ही लीला करते थे और कृष्ण गोकुल के सभी निवासियों के साथ निरंतर लीला करते हुए आनंद लूटते थे। इसको देखकर ब्रह्मा जी विस्मित हैं। अहोभाग्यम नंद गोप व्रजौ कसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहोभाग्यम, कितना सौभाग्य है ब्रजवासियों का। अहोभाग्यम, कितना भाग्य है। नंद गोप व्रजौ कसम, ये नंद गांव और बरसाना और बाकी जितने यहां ब्रज के निवासी हैं ये सभी कृष्ण के साथ किस तरह लीला कर रहे हैं। यन मित्रम परमानंदम, उनके साथ मित्रता करके मित्र के रूप में सखा भाव में। पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, लेकिन इनके साथ कैसी लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी बिल्कुल देखकर विस्मित हो गए। इसलिए गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण बहुत उल्लास के साथ इस तरह अपनी बाल लीलाओं को रचाते हैं। अब आगे लीला का वर्णन आरंभ कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रूप का वर्णन हो गया है, उनके गुण का वर्णन हो गया है। उनका गुण यह है कि कृष्ण भक्तवत्सल हैं और किस तरह अब इन लीलाओं को वो रचाते हैं, अपनी भक्तवात्सल्यता का प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, इसका वर्णन अब अगले लाइन से वो आरंभ कर रहे हैं। और ये दामोदर लीला का वर्णन हुआ जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि द्रोण और धरा ने किस प्रकार की तपस्याएं की थी जिसके परिणाम स्वरूप उनको नंद और यशोदा का जीवन प्राप्त हुआ। तो उसका उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने दामोदर लीला का निरूपण किया और अंत में यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में किसी तपस्याओं का फल नहीं, केवल कृष्ण की अहेतु की कृपा थी, अन्यथा ऐसा सौभाग्य किसी को तपस्या के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। और यशोदा का कैसा सौभाग्य था, उनका भाग्योदय कैसे हुआ और किस हद तक हुआ, किस स्तर तक हुआ, इसका विवेचन करने के लिए दामोदर लीला का विस्तृत वर्णन इन दो अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी ने कर दिया। तो इसलिए आगे वो कह रहे हैं यशोदा भियोलुख लात धाव मानम परामृष्टम अत्यंततो द्रुत्य गोप्या। तो यशोदा भियोलुख लात, यशोदा के भय से, तब लीला का आरंभ हो रहा है कि यशोदा से वो भयभीत क्यों हुए, क्योंकि यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार से व्यवस्थाएं करती थी। तो यशोदा मां चाहती थी कि कृष्ण निरंतर सुखी रहें, संतुष्ट रहें। कृष्ण नवनीत के बहुत शौकीन थे, इसलिए माखन खाते खाते यहां वहां भटकते फिरते थे। यशोदा माई के पास कई लोग आकर शिकायत करते थे, यशोदा माता बहुत दुखी होती थी कि क्या मैं अपने घर पर उत्कृष्ट स्तर का नवनीत नहीं खिला पाती कि मेरा लाला यहां वहां भटकता फिरता है, समस्या क्या है। इसलिए यशोदा माई ने कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, गोपाल, घर पर हम आपको इतना बढ़िया मक्खन खिलाते हैं, फिर भी घर का माखन छोड़कर आप अलग अलग स्थानों में भटकते हुए विभिन्न घरों में जाकर नवनीत क्यों चुराते हो। तो कृष्ण ने उत्तर दे दिया, घर पर बैठकर नहीं खाना चाहता, कमा के खाना चाहता हूं। तो यशोदा माई परेशान हो गई और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यशोदा माई के मन में यह भावना आई कि हो सकता है मेरे जितने सेवक हैं और दास दासियां हैं वो उत्कृष्ट स्तर का नवनीत नहीं पैदा कर रहे, इसलिए मैं स्वयं अपने हाथों से कृष्ण के लिए मक्खन निकालूंगी और जो भी कृष्ण से संबंधित मिठाइयां होंगी वो मैं स्वयं बनाऊंगी। इसलिए यशोदा शब्द का अर्थ है यहाँ पर यशोदा भियोलुक। यशोदा के मन में भावना क्या थी कि जितनी गायें थी, लाखों लाखों गायें, उनमें से कुछ विशिष्ट गायें थी जिनको पद्मगंधा गायें बताई जाती, और उन पद्मगंधा गायों से जो दूध निकलता वो दूध से यशोदा माई नाना प्रकार के मिठाइयां मिष्ठान कृष्ण के लिए तैयार करती। अर्थात यशोदा माई की चेतना क्या थी, जो सर्वश्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, बेस्ट हो, वो कृष्ण के लिए। अर्थात कृष्ण की सेवा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ संभव हो, उत्कृष्ट संभव हो, वो मैं कृष्ण को खिलाऊंगी। तो जब यशोदा माई का नाम आता है तो उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में कृष्ण के लिए थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास बचा के रखना है, समर्पित करना है तो फर्स्ट क्लास, कृष्ण की सेवा में लगाना है तो फर्स्ट क्लास। वो कैसे, हर दृष्टि में। अगर हमारे जीवन का जो समय है तो किसी को लगे कि अभी मैं भक्ति नहीं करूंगा, अभी तो जवान हूं, यौवन हूं, शक्ति है, स्फूर्ति है, इंद्र तृप्ति करूंगा, और भविष्य में कुछ शक्ति नहीं बचेगी, अब गाड़ी चलने के हालत में नहीं होगी, तब हम कृष्ण के पास चले जाएंगे। तो कई बार इंद्र तृप्ति के लिए लोगों के मन में यह चेतना होती है कि इंद्र तृप्ति के लिए नंबर वन, अपना प्रायोरिटी नंबर वन होगा, जिससे कि मेरी इंद्र तृप्ति श्रेष्ठतम हो, और बाकी धर्म और ये सब काम में जो होने के बाद जो बच जाए वो दे देना। गाड़ी चला चला के बिल्कुल घिसा पीटा 50,000 माइल चल गया और चलने के हालत में नहीं है, 10 लोग धक्का मार के भी आगे नहीं बढ़ते, बोले चलो यार हरे कृष्णा को दे दो गाड़ी, वो लोग संकीर्तन वैन में यूज करेंगे उसको, किसी काम की नहीं, चलो। अरे ये हमारे जमीन में भूत प्रेत विश्वास वगैरह बहुत है, अच्छा इसको उनको दे दो दान में, वो लोग कीर्तन करके भूत प्रेत को भगा देंगे, और स्वयं भी भूत प्रेत ही लिखते कई बार होते, दे दो उनको। और कई कई ऐसे जमीन अपने को डोनेशन में मिला है वास्तव में, और जब बाद में कीर्तन के बाद भी रात को सोते समय भक्तों को प्रॉब्लम हुआ है तो डोनर ने आके बोला हाँ हाँ थोड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर, हमने सोचा आप आएंगे तो वो भाग जाएंगे आपके आपके डर से। तो कई बार देने में हमको लगता है कि जब सब कुछ होने के बाद, जब पूरी तरह रस निचोड़ लो, निचोड़ने के बाद फिर गन्ने से कुछ भी नहीं निकले, पूरा प्रयास करने के बाद फिर जो बचा कुचा है वो दे दो कृष्ण के, बाकी जो पहले मावा निकले वो स्वयं ले लो। तो इसलिए ये चेतना है भौतिक इंद्र तृप्ति की, लेकिन यशोदा माई की चेतना क्या थी, जो बेस्ट हो, नंबर वन हो, श्रेष्ठतम हो, वो कृष्ण के लिए। तो इसलिए जो जवानी है, यौवन है, उस समय कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरेत, उस स्तर पर कृष्ण की भक्ति आरंभ करनी चाहिए, तो उससे अधिक श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तो ये हो गया जहां तक हमारे जीवन का प्रश्न है, समय का प्रश्न है, और प्रतिदिन जब हम भक्ति करते हैं उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो कृष्ण के लिए रखना चाहिए, अर्थात सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि भक्ति के कार्य के लिए श्रेष्ठ है। तो यदि हम कहते हैं कि कृष्ण ही मेरे जीवन में प्रधान है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति ही मैं प्रधान मानता हूं, और मैं भगवान का नाम जपता हूं रात को 9:30 बजे, जब दिन के सारे कार्य हो जाएं, मन शांत हो जाए, फिर मैं बिस्तर लगा के शांति से बिस्तर को देखता हूं, मन में चैन आती है कि बस भविष्य उज्जवल है, और आ हाथ में माला लेकर फिर मैं जपता हूं, और जपते जपते जो मैं गिरता हूं, ओहो क्या अनुभव है मेरा। अगर कोई व्यक्ति ये विचार करे तो फिर उसकी भक्ति बहुत आगे नहीं चलेगी। तो यदि बेस्ट कृष्ण के लिए रखना है तो दिन का बेस्ट समय भी कृष्ण के लिए रखना है, वो सुबह का समय, अर्थात सुबह उठना है। लोग कहते हैं वो दिन कब आएगा जब कृष्ण की बांसुरी सुनूंगा मैं, कृष्ण का वेणु वादन कब मेरे कर्ण रंध्रों से प्रविष्ट होगा और फिर कब मेरा हृदय प्रफुल्लित होगा। लेकिन कृष्ण का वेणु वादन बहुत दूर की बात है, पहले अलार्म की आवाज सुननी पड़ती है, और जब घड़ी का अलार्म जब मीठा लगे तब समझना चाहिए कि वेणु वादन मीठा लगेगा कुछ समय में। लेकिन कई बार वो अलार्म ही कर्कश लगता है और अंधेरे में भी हाथ पैर मारकर उसको चुप कर देते हैं हम कि चुप हो जा नालायक, गलत समय पर तू बज रहा है। अर्थात कोई विशेष आकर्षण नहीं है, तो इसलिए दिन का जो सबसे उत्कृष्ट समय है जब नींद भी बिल्कुल कस के आती है, उस समय जब उठकर हम भगवान के लिए वो समय दें तो वास्तव में वो पद्म गंधा के तुल्य है। यशोदा अर्थात वो जो अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में केवल कृष्ण को ही प्रधान मान के कृष्ण के लिए हर प्रकार से उत्कृष्ट व्यवस्थाएं करें, कीपिंग द बेस्ट फॉर कृष्ण, ये यशोदा माई की चेतना है, ये उनकी भावना है। इसलिए ऐसे गायों से जो दूध उत्पन्न होता है उसको लेकर यशोदा माई उनको उबालने के लिए रख देती हैं, और यशोदा माई कृष्ण को स्तनपान करा रही है और उस समय दूध उफनता है। और वास्तव में जैसे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि दूध भी एक व्यक्तित्व है, और उन्होंने देखा कि यशोदा माई कृष्ण को स्तनपान करा रही हैं, तो फिर मेरी क्या सेवा होगी, और इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, और इसलिए वो दूध ऊपर निकलने लगा सिगड़ी में छलांग लगाने। तो उस समय यशोदा माई ने देखा अरे दूध उफन रहा है तो मुझे जाके बचाना चाहिए, क्योंकि ये भी कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है, कृष्ण की सेवा से संबंध रखता है। इसलिए यशोदा माई कृष्ण को रख दी और भागती हुई चली गई। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कई बार कृष्ण की सेवा में हम दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमको दो महत्वपूर्ण सेवाएं में लगाते हैं और हम दुविधा में पड़ जाते हैं, अब मैं कौन सा करूं। और ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप हृदय के भीतर से प्रेरणा प्रदान करके हमको उचित बुद्धि देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम, अर्थात जो बुद्धि है वो कृष्ण प्रदान करेंगे। और इसलिए यशोदा माई ने विचार किया कि यदि ये दूध उफन के नीचे गिर गया तो कृष्ण के लिए मैं मिठाइयां तैयार नहीं कर सकती। इसलिए यशोदा माई कृष्ण को छोड़कर भागी और दूध को उठाकर रख दी। लेकिन इसी बीच कृष्ण क्रोधित हो गए, उनको ठीक नहीं लगा कि यशोदा माई ने इस तरह मेरी उपेक्षा करके यहां से चली गई। तो कृष्ण वहां से गए और जो दही का मटका था उसको तो तोड़ दिए, और फिर बगल के कमरे में जाकर उखल पे चढ़ गए और माखन का जो मटका था उसको तोड़ दिया और बंदरों में नवनीत वितरण करने लगे। तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि पूर्व जन्म में, पूर्व युग में जब कृष्ण प्रभु रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए थे और रावण का संहार करने हेतु वानर सेना के साथ वन वन में भटकते फिर रहे थे, उस समय प्रभु रामचंद्र जी की कई लीलाएं हुई। और उस समय जैसे उद्धव जी बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी क्या विशेषता थी कि कितने भक्तवत्सल थे, कि अपने भक्तों के साथ इतना वो प्रेम करते थे कि उनके सानिध्य में घूम रहे थे। किनके सानिध्य में? वानरों के। किम चित्रम अच्युत तवई तदशेष बंधो दासेषु अनन्य शरणेषु यदात्म साकम यो रोचयत सह मृगै स्वयं ईश्वराणाम श्रीमत किरीट तट पीड़ित पादपीठ। भगवान श्री रामचंद्र जी की इतनी शक्ति थी कि कोटि कोटि देवतागण अपने जाजुल्यमान मुकुट को लेकर प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में समर्पित कर देते कि प्रभु हम आपके दास हैं। श्रीमद किरीट तट पीड़ित पादपीठ, अर्थात प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में इन सभी विभूतियों के मस्तक के ऊपर स्थित जो मुकुट थे वो पड़े रहते थे। अर्थात इतना आदर, इतना सम्मान, उनकी शक्ति की इतनी चर्चाएं होती थी। लेकिन वही प्रभु रामचंद्र वनों में क्या कर रहे थे? किम चित्रम अच्युत। अरे भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों के साथ प्रेम में कभी च्युत नहीं होते, उसकी क्या सीमा है? अशेष बंध हो, किसी को भी बंधु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं भगवान। दासेशु अनन्य शरणेशु, केवल एक योग्यता कि अनन्य शरण कोई धारण करेगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्वीकार करेगा और यह संकल्प करेगा कि कृष्ण ही मेरे स्वामी है और मैं उनका नित्य दास हूं। बस इस भावना को देखकर भगवान समर्पित हो जाते हैं। यो रोचयत सह मृगै स्वयमीश्वराणाम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जिनकी शक्ति और सत्ता इतनी असीम थी कि कोटि कोटि देवतागण आकर उनको समर्पित हो जाते, वो अतीव शक्तिशाली प्रभु रामचंद्र जी वन में वानरों के साथ विहार कर रहे थे। यो रोचयत सह मृगई स्वयं ईश्वराणाम। अर्थात देखिए भगवान की भी क्या लीला है। कोई अतीव शक्तिशाली व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ, जिसको समाज के सामान्य लोग सम्मानित करते हो, पब्लिक में सबके सामने बंदर के साथ घूमना चाहेगा क्या? कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, 5-स्टार होटल में उसका बिजनेस मीटिंग है, साथ में बंदर को लेके जाए तो फिर कैसा लगेगा? कोई करेगा ऐसे? कभी नहीं करेगा। मीटिंग में बड़े बड़े लोग टाई कोट पहन के बैठे और एक बंदर भी बैठा है और सब लोग, ये कौन है? मेरा एसोसिएट है। क्या कर रहा है वो? कंसल्टेंसी देगा मेरे को। बोले पागल हो गए क्या? इसके साथ धंधा मत करो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, पागल आदमी है, कैसे कैसे लोगों के साथ घूम रहा है। और प्रभु रामचंद्र जी एक नहीं दो नहीं कोटि कोटि वानरों के साथ घूम रहे हैं और उनका सुझाव ले रहे हैं, बंदरों को पूछ रहे हैं अब हमें क्या करना चाहिए, चढ़ाव कैसे करना चाहिए, रावण को किस दिशा में खोजना चाहिए, अभी अनुकूल समय है क्या? तो भगवान कितने नम्र हैं कि बंदरों से वो कंसल्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके साथ निकट का संबंध स्थापित किए हैं। अर्थात ये भगवान की भक्तवात्सल्यता है। तो उस समय प्रभु रामचंद्र जी वानरों के प्रति इतने कृतज्ञ हो गए थे कि उस समय उन्होंने वानरों को यह आश्वासन दिया था कि अभी तो वन में मैं भटकता फिर रहा हूं, धन का अभाव है, व्यवस्थाएं नहीं है, आपको उचित प्रकार से खिला पिला नहीं पा रहा हूं, तो इस युग में इस लीला में मेरी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, इसलिए क्षमा करना, लेकिन खिलाने पिलाने में जो कमी रह गई इस लीला में अगले युग में आप लोग आ जाना और उस समय मैं इंटरेस्ट के साथ पूरा करूंगा। तो इसलिए जितने वानर थे वो प्रकट हुए और कृष्ण इस बात को याद करके उनको जब जब चाहे नवनीत खिला देते थे और फिर गोपियां उलाना देती तो कृष्ण कहते थे आपका ये नवनीत इतना थर्ड क्लास है, ये लोग भी फेंक दे रहे हैं। तो वास्तव में कृष्ण का बंदरों के साथ बहुत प्रेम था और इस तरह बंदरों को खिला रहे थे, तभी यशोदा माई पीछे से आई और हाथ में उनकी छड़ी थी और उस छड़ी को देखकर यशोदा भियोलु खलात धावमानम। तो कृष्ण देखे कि बंदर घबरा रहे हैं, क्या बात है, मुड़ के देखे यशोदा माई आ रही हैं, तो कृष्ण भागने लगे। यशोदा माई के डर से, यशोदा माई के भय से वो भागने लगे और जब भागे तो वर्णन आता है परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिशाली सभी ईश्वरों के ईश्वर तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा, वो भगवान अत्यंतत्व द्रुत्य गोप्या, यशोदा माई के द्वारा पराजित हो गए। यशोदा माई उनसे और तीव्र गति से भागकर उनको हस्तगत कर ली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विजयी होना चाहता है, पराजित होने की इच्छा किसी की नहीं। बचपन से जो जीव के मन में पूर्व जन्मों का संस्कार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली और बाकी परिवार और स्वजनों के बारंबार विज्ञापन करने से हमारे मस्तिष्क में ये कूट कूट कर भर दिया गया है कि जीवन में कुछ करना है तो बिल्कुल नंबर वन, सबको हरा के ऊपर आना है, सबको पराजित करना है। अर्थात ये स्पर्धात्मक वृद्धि हम सभी के अंदर पूरी तरह से संचारित कर दिया गया है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कृष्ण परामृष्टम अत्यंत तो अपने भक्त के द्वारा पराजित होने के लिए स्वीकार हो जाते हैं, तो आगे भी हम देखेंगे। लेकिन भागते भागते यशोदा माई ने कृष्ण को पराजित कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे जीवन में भय होता है कोई भागते भागते हमसे आगे ना निकल जाए। हर क्षेत्र में मैं भागूं तो ऐसा भागूं तो पीछे दूर दूर तक कोई हो तो ठीक है, लेकिन साथ में भी हो तो डर लगता है आगे निकल जाएगा, और आगे निकल गया तो सोचता हूं कैसे पकड़ के खींचूं। अत्यंत तो अर्थात जो उनसे अधिक तेज भागकर आगे निकल गई, और इसमें कृष्ण को आनंद आ रहा था। तो क्या इसमें हमको आनंद आता है? नहीं आता। अर्थात इस संपूर्ण जगत का निर्माण किया गया है, भगवान ने जीवों का निर्माण किया तो आनंद मायोभ्यासात, आनंद के आदान प्रदान के लिए। तो कृष्ण ने जीवों की उत्पत्ति की आनंद के आदान प्रदान के लिए, और उस आनंद के आदान प्रदान में भी जो सर्वश्रेष्ठ आनंद जिसकी आकांक्षा से जीवों की उत्पत्ति की कि वो किए जीव कब अपने प्रेम के बंधन में मुझे बांधेंगे और अपने प्रेम की शक्ति से मुझे पराजित करेंगे। अर्थात परम सत्य ने सृष्टि के आरंभ में जीवों की रचना इस संकल्पना से की जिससे कि मैं पराजित हो सकूं। अर्थात भक्ति का अर्थ है पराजय, और भक्ति करते हुए साधना करते समय यदि हम विचार करें कि पराजित होना एक बहुत बड़ी समस्या है, पर हमें भक्तों के संग में विजयी होना है और दूसरे भक्तों को पराजित करना है, और इस स्पर्धात्मक वृत्ति के साथ यदि भक्ति करेंगे तो वास्तव में ये भक्ति के भाव के ठीक विपरीत है। तो इसलिए परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, अर्थात भक्ति करते समय भी कृष्ण का ये भाव देखकर हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के द्वारा पराजित होने में आनंदित होते हैं तो फिर मैं दूसरे भक्तों के द्वारा पराजित होने में आनंद क्यों नहीं लेता हूं। तो इसलिए दामोदर का महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे दामोदर, कृपा करके मुझे प्रेरणा दीजिए, मुझे शुद्ध बनाइए, जिससे मेरे अंदर जो द्वेष की भावना है वो नष्ट हो सके और वास्तव में हृदय के अंतःकरण से दूसरे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देखकर मुझे उल्लास हो। केवल मौखिक औपचारिक ढंग से नहीं, लेकिन वास्तव में हृदय के अंतःकरण से मैं दूसरे भक्तों को आगे बढ़ता हुआ देखकर, भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देखकर आनंद लूं और उनके भक्ति में वर्धन के लिए नाना प्रकार से व्यवस्थाएं करूं। तो इस तरह से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए ये दामोदर के मास में। परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, और ये वास्तव में हमारे भक्ति में, भक्तों के संग में प्रगति के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति करते हैं और कोई हमसे अच्छी सेवा कर लेता है, कोई कुछ विशेष प्रकार से कुछ कर लेता है, तो हमको लगता है कि अरे ये तो बाद में आया, ये तो मेरे 5 साल बाद में आया, ये तो मेरे 10 साल बाद में आया है, तो ये आगे कैसे बढ़ सकता है, तो संभव नहीं है। तो भगवान आपने ऐसा कैसे किया, आपने बराबर डेट नोट नहीं किया क्या, कौन पहले आया था कौन नहीं आया था, मेरे पास रिकॉर्ड है, चाहे तो आपको बता दूं मैं। तो इस तरह से यदि इस चेतना के साथ हम अपनी भक्ति करते रहेंगे तो पूरे भक्ति के जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए भक्ति के जीवन में यदि वास्तव में भक्ति का आस्वादन करना है तो भक्ति के तत्व को समझना आवश्यक है, और यह भक्ति का तत्व है परामृष्टम अत्यंतत्वो द्रुत्यगोप्या। यशोदा माई आगे भागी, आगे निकल गई और फिर कृष्ण को पकड़ लिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते थे और एकलव्य से नहीं, क्योंकि एकलव्य की इच्छा थी कि मैं अर्जुन को हराऊं, परास्त करूं। तो कृष्ण ने उसको डीमन या असुर का एक रोल दे दिया और कृष्ण ने स्वयं उसकी हत्या की। और भारत में बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं, एकलव्य के साथ अन्याय हुआ है, ये हुआ है, वो है, क्यों किया ऐसे। कृष्ण ने स्वयं उसको बुलाया, एकलव्य की हत्या कृष्ण ने स्वयं की, और वो भी युद्ध में नहीं। कृष्ण का युद्ध में करूंगा तो फेमस हो जाएगा, इसलिए कृष्ण ने रात को बुलाया अलग से और युद्ध भूमि के बाहर बुलाया। एकलव्य जब गए तो कृष्ण ने उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पर्धात्मक वृद्धि थी, और वैष्णव अर्थात वो स्पर्धा करके दूसरे वैष्णवों को हराने का प्रयास नहीं करता, उनके द्वारा पराजित होने का प्रयास करता है। इसलिए परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। सो भक्ति इज द साइंस ऑफ बीइंग डिफीटेड। भक्ति वो विज्ञान है कि किस तरह हम परास्त हो सकें। तो अब आगे आ रहा है दूसरा श्लोक। रुदन्त मोहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रं मोहुश्वासकं पात्रे रेखांक कंठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं। तो अब कृष्ण को बांध दिया, जब गोपाल बंध गए तो रोने लगे, रुदंतम मुहुर, और बार बार रोने लगे। नेत्र युग्मम रजंतम, दोनों अपने नेत्रों को वो अपने हस्त कमल से इस तरह मलने लगे। कराम भोज युग्मेन, और दोनों हाथ उनके लगे हुए थे, अर्थात इतना अश्रुपात हो रहा था, अश्रुपात का इतना वेग था कि कृष्ण दोनों हाथ से प्रयास कर रहे थे उस अश्रुपात को रोकने। स आतंक नेत्रम, और उनके नेत्र भी आतंकित थे। तो संस्कृत बहुत ही विशेष भाषा है और इसमें अलग अलग शब्दों का अलग अलग भाव होता है। तो भय जो है वो एक प्रकार का सूचक है, लेकिन जब भय की सीमा और अधिक हो जाती है तो वो आतंक में परिवर्तित हो जाती है। यदि कोई कहे कि आसपास लोग घूम रहे बंदूक लेके, डर है कि हत्या हो जाएगी, या आसपास कोई शेर घूम रहा है आपको खा जाएगा, तो ये सुन के भय होता है। लेकिन रास्ते में चलते चलते वास्तव में सामने शेर आ जाए तो वो सुना था वो तो याद आ ही जाता है, और उसके बाद शेर को सामने दिख के उनका दर्शन करके जो मन में भाव पैदा होता है उसको कहते हैं आतंक। अर्थात वो भय अब वास्तविकता में परिवर्तित हो रहा है तो आतंक। इसलिए शब्द आता है आतंकवादी, अर्थात केवल वो लोग विज्ञापन नहीं करते, वास्तव में सामने खड़े रहते बंदूक लेके, तो उसको देख के लोग आतंकित हो जाते हैं। तो यहां पर कृष्ण आतंकित हो रहे हैं। स आतंक नेत्रम, अर्थात नेत्र में आतंक के चिन्ह है। मुह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ, और उनके उनका कंठ मुह श्वास कंप, बार बार कंपित हो रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, और जब व्यक्ति रोता है जोर जोर से तो इस तरह श्वास अंदर बाहर करता है वो, इस तरह कृष्ण कर रहे थे स्थितग्रैवम दामोदरम। और ऐसी अवस्था में यशोदा माई रस्सियां लेके आई और उन रस्सियों से कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास करने लगी। तो इसलिए वर्णन आता है जो लाखों लाखों गायों को बांधने के लिए रस्सियां का प्रयोग होता था, उन रस्सियों को ले आई और उन रस्सियों को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जोड़ा, लेकिन विशेषता क्या थी, दो उंगली छोटी। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि एक उंगली अर्थात भक्त का प्रयास और दूसरा कृष्ण की कृपा। तो कृष्ण ने उन रस्सियों को देखकर विचार किया कि अगर यशोदा माई मुझे इस उखल से बांध देगी तो मैं बंध जाऊंगा, और बंध जाऊंगा तो माखन नहीं चुराऊंगा, माखन नहीं चुराऊंगा तो मेरे ग्वाल बाल मित्रों को क्या बांटूंगा, और उनको रोज रोज लूटमाट करने की आदत हो गई है और मेरे बिना उनका गैंग अधूरा रह जाता है क्योंकि लीडर तो मैं हूं, और यदि मैं ये नहीं करूंगा तो बेचारे क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। और इसलिए उनके साथ क्रीड़ा करने और इस तरह माखन चुराने के लिए मुझे मुक्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उस समय भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति थी वो प्रधानभूत हो गई, और उस समय यशोदा माई ने जब प्रयास किया तो वो उनका प्रयास विफल हो गया और दो उंगली छोटी पड़ गई। और यशोदा माई और एक लेके आई और एक रस्सी लाई, इस तरह से कई कई रस्सियों को जोड़कर भी उनके प्रयास विफल हुए। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्ट कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। वर्णन आता है तो कृष्ण ने देखा कि किस तरह यशोदा माई पूरी तरह पसीने से तर हो गई हैं और उनके पूरे शरीर पर देह पर श्रमवारी देखकर कृष्ण का हृदय पसीज गया। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्ट कब्र, और उनके बालों पर उनके केश पर जो नाना प्रकार के पुष्प थे वो सब बिखर के नीचे गिर गए। तो यशोदा माई की उस अवस्था को देखकर कृष्ण ने विचार किया दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, उस परिश्रम को देखकर कृपया भगवान ने विचार किया कि मुझे कृपा करनी चाहिए। आसित स्व बंधने, तो उनके बंधन में आने के लिए वो तैयार हो गए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि भक्ति में अपना प्रयास बहुत आवश्यक है। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। इसलिए भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा दोनों साथ साथ चलती है। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधन, इस तरह सुखदेव को संवर्णन कर रहे हैं। तो जनानिवास प्रभु बताते हैं कि वास्तव में यशोदा माई बार बार प्रयास कर रही थी फिर भी विफल हो रही थी, और इतने सारे उनके जो रस्सियां थी वो सभी पूरी तरह से काम नहीं आई। तो उस समय यशोदा माई ने देखा कि पीछे बिल्कुल राधा रानी खड़ी है, तो यशोदा माई ने राधा रानी के जो केश को बांधने के लिए एक धागा होता है वो ले लिया और उस धागे को बाकी रस्सियों से जोड़ दिया, और जब राधा रानी के केश के उस रस्सी को जोड़कर जब सभी रस्सियों को बांधा तब कृष्ण ने कहा अब तो बांधना ही पड़ेगा। तो इस तरह वो अभी हाल ही में बता रहे थे, मैं मायापुर गया था उस समय, तो एक उसमें एक इस तरह का एक दृष्टि आता है। तो कृपयासित स्वबंधने, यशोदा माई के बंधन में के वश में कृष्ण आ गए। तो इस लीला के माध्यम से कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह मैं भक्त के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाता हूं। प्रेम बंधन सबसे शक्तिशाली बंधन है, और सामान्य व्यक्ति कभी भी किसी के बंधन में नहीं आना चाहता। हम किसी के साथ संबंध स्थापित भी करते हैं तो उनके द्वारा बंधन में आने के लिए नहीं, उनको नियंत्रित करने के लिए। तो यहां पर भगवान इतना साहस कर रहे हैं कि कि इस तरह की छूट दे रखी है कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मैं उसका बंदी बन जाऊंगा। तो हम इस जगत में दूसरे लोगों के साथ आदान प्रदान करते समय भी उनके बंधन में आने के लिए घबराते हैं। और यहां कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के बंधन में आ जाऊंगा, कृपयासीत स्व बंधने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इस संपूर्ण लीला का पूरी तरह से निरूपण किया गया है। और तब जब कृष्ण पूरी तरह बंध गए और रो रहे थे, और उस समय बलराम जी और बारिश बाकी सखा आ गए आसपास, और कृष्ण उनको देखकर कहने लगा, अरे मैं बंधन में हूं, इतनी दुविधा में हूं, और आप लोग क्रीड़ा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए। तो बलराम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, मैं जाके मां से कुछ अनुरोध करूंगा कि आपको छोड़ दे। मां जानती नहीं तुम कौन हो। तो कृष्ण का, जाओ बताओ। तो बलराम जी गए यशोदा माई के साथ, यशोदा माई के पास जाके बोलने लगे, मां तुम जानती हो कृष्ण कौन हो? यशोदा माई ने कहा, कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सभी के स्रोत हैं, सर्व कारण कारण है। यशोदा माई ने कहा, अच्छा तो तुम कौन हो? अरे मैं सभी अवतारों का स्रोत हूं, संकर्षण हूं, ये हूं, वो हूं, सभी जितने अवतार हुए मुझसे ही निकलते हैं। यशोदा माई ने कहा, सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या? भाग जाए यहां से, ज्यादा कहेगा तुमको भी बांध दूंगी उसके बगल में। तो भागे भागे वो कृष्ण के पास है, बोले प्रयास किया लेकिन विफल हुआ। तो यशोदा माई का जो बंधन है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं। कृपयासीत स्व बंधने, उस बंधन में यशोदा माई ने बांध दिया था। तो प्रेम का जो रज्जू है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और सामान्य व्यक्ति इसके विषय में संकल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि हम अभी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बेड़ियों के द्वारा बंधे हुए हैं। वो ऐसी शक्तिशाली रज्जू है जिनके अधीन हम लोग कठपुतली की तरह नृत्य कर रहे हैं, तो इस प्रेम के बंधन को समझ नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे भौतिक जगत के कलयुग के विशेष रूप से जड़मति वाले मूर्खों को समझाने के लिए भगवान द्वापर युग के अंत में ऐसी सुंदर लीलाओं को रचाकर विज्ञापन कर रहे हैं। जब किसी प्रोडक्ट का ज्ञान न हो तो विज्ञापन आवश्यक होता है, तब जाकर जानकारी होती है कि मार्केट में ये माल भी मिलता है। इसलिए आगे कह रहे हैं, इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् शतावृति वन्दे। तो भगवान ये दामोदर लीला क्यों कर रहे हैं? ये दामोदर लीला गोलोक वृंदावन धाम का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। आख्यापयंतम अर्थात विज्ञापन, अर्थात एडवर्टाइजमेंट। इति दृक् स्व लीला भीर, तो भगवत धाम में जो नित्य लीला चलती है उसका एक सैंपल दे दिया यहां पर, कि आप इस भौतिक जगत में दुख के, क्लेश के कीचड़ में बुरी तरह लहूलुहान हो रहे हो, तो आनंद की खोज में हो। आनंद का कुंड कहां है जानते हो? नहीं जानते? ये लीला देखो, ब्रज के निवासी किस तरह आनंद के कुंड में निरंतर निमग्न होकर गोते लगा रहे हैं। आनंद कुंडे, मैं अपने भक्तों को पकड़कर जब आनंद के सागर में डुबोता हूं तो कोई उससे निकल नहीं पाता। तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार ताटके आवर्त भावोद्गम वंशी ध्वनि चक्रपात नारीर मन तृणपात तहा के डुबाए न उद्गम। चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का यौवन तारुण्य अमृत, अमृत के सागर की तरह है। कृष्णस यूथ इज लाइक एन ओशन। तरंग लावण्य सार और कृष्ण का सौंदर्य, कृष्णस ब्यूटी आर लाइक द वेव्स, सतह पर लहरों के तुल्य है। और इस सागर के बीच क्या है, ताटके आवर्त भावोद्गम। तो कृष्ण के सौंदर्य और लावण्य को देखकर हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। तो जो भाव भक्ति है वो आवर्त की तरह है, अर्थात किसी जलाशय में या किसी नदी में, सरोवर में क्या होता है, आवर्त भौरा, अर्थात उसमें फंस जाओ तो बिल्कुल वो अंदर खींच लेगा। ताटके आवर्त भाव उद्गम। तो आगे कह रहे हैं वंशी ध्वनि चक्रपात। तो कृष्ण का जो वेणु वादन है वो धरती पर चक्रवात की तरह है। चक्रवात अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु में समर के समय वो हवा चलता है इस तरह और यूं यूं घूमता है और सब आसपास जो घास फूस है उसको उठा लेता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ चक्रवात कहते हैं, बवंडर कहते हैं, ऐसे ऐसे घूमता है, टॉर्नेडो, ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखता है बिल्कुल लैंड पे, ऑन द लैंड जस्ट मूव्स। सो वंशी ध्वनि, तो कृष्ण का जो वंशी ध्वनि है, वेणु वादन है, वो इस तरह है, चक्रवात की तरह है। और इस चक्रवात से घास और बाकी जो तृण ये सब ऊपर उठ जाते हैं। नारीर मन तृणपात, नारियों का मन तृण की तरह है, घास की तरह है, ये चक्रवात में उठ जाता है और फंस जाता है, उसमें घूमने लगता है उसके साथ साथ वेणुवादन सुन के। तो जो टॉर्नेडो हो, चक्रवात हो, उसकी भी एक सीमा होती है किसी भी वस्तु को उठाने की, वो केवल जो घास फूस और लाइट चीज है उसको ही उठा पाता है, और बड़े बड़े पत्थर है उनको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वेणुवादन सुन के नारियों का मन अर्थात गोपियों का मन उठ गया, गोपियों का मन उसमें फंस गया और उसी चक्र में फंस गया। हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पत्थर की तरह है, तो चाहे कितना भी चक्रवात चले वो पत्थर को कैसे हिला सकता है, कैसे उठा सकता है। और कृष्ण का वेणुवादन सुन के गोपियां सब कुछ छोड़ के भागी। और हम लोग कभी कभी कल्पना करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा कि हम वेणु सुनेंगे और हम भागेंगे। लेकिन अभी जिस अवस्था में है, रात को 12 एक बजे वेणु बजेगा, हम पहला प्रश्न पूछेंगे रात को क्यों बजाया, वो भी ये टाइम पे क्यों बजाया, अभी तो नींद लगी थी। मैं आपको सही सही टाइम बताता हूं कब मैं फ्री होऊंगा, उस समय बजा देना। तो सब कुछ छोड़कर भागने का मन नहीं होता, पत्थर की तरह मन है, नाना प्रकार के अनर्थों से भारी हमारा मन है। तो वेणु वादन चक्रवात की तरह काम करता है जब मन हल्का होता है तृण की तरह, और अनर्थों से मुक्त मन, गोपियों का मन जो कि शुद्ध कृष्ण प्रेम में आप्लावित था, वो तृण की तरह ऊपर उठ गया। नारीर मन तृणपात, तो ये चक्रवात उस घास फूस को उठा के लेके आता है कहां पे, सागर में, कृष्ण रूपी जो सागर है उसमें उठा के लेके आता है। और सागर में जो बवंडर घूम रहा है अभी, वो जो अपना सागर के बीचों बीच जो घूम रहा है भौरा, उस भौरे के पास लाकर उस तृण को पटक देता है। तो भौरा घूमते घूमते उस तृण को, उस घास को अंदर खींच लेता है। अर्थात नारियों का मन लाकर कृष्ण अपने सौंदर्य के साथ इस तरह मिला देते हैं, और कृष्ण के सौंदर्य को देखकर उनके साथ लीला क्रीड़ा करते हुए गोपियों का मन इस तरह कृष्ण में समाविष्ट हो जाता है कि बिल्कुल उस सागर में निमग्न, ताहके डुबाए न उद्गम, फिर वो ऊपर उठ नहीं सकता। इस तरह गोपियों का मन निरंतर कृष्ण के आनंद प्रेम में डूबा रहता है, इसको कहते हैं आनंद कुंडे। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंड, ये आनंद का कुंड सामान्य नहीं है, ये भौरा चलता रहता है इस कुंड में, और कोई उसके संपर्क में आ जाए तो पूरा खींच लेगा आपको अंदर, और एक बार भौरा खींच लिया फिर उससे बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए इसको कहते हैं आनंद कुंडे। स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। तो ये बिलबोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा दामोदर लीला का, और नीचे क्या लिखा है कि भक्तैर जितत्वम, मैं भक्ति के द्वारा पराजित होता हूं, भक्ति इज द बेस्ट, इस तरह से इस बात का विज्ञापन हो रहा है। तदीयेषिताग्येषु भक्तैर जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एवं संदर्शिता ह्यंग हरिना भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। वो कृष्ण जो बड़े बड़े ईश्वरों के ईश्वर हैं, अपने भक्तों की ईश्वरता को प्रधानभूत मान के उनके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भक्तैर जितत्वम एवं संदर्शिता ही अंग, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए भगवान प्रकट हुए और इस लीला का निरूपण किया। तो इस तरह से यह विज्ञापन है भगवान की भक्ति के लिए। तो आगे कह रहे हैं अब अगले दो श्लोकों में वो भगवान से वर मांगते हैं, हे भगवान आप कृपा करके मेरी इस अवस्था को समझिए और अपनी कृपा बरसाइए। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम ऋणे हम वरेषादपिह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरस्तम किम अन्यै। वरम देव मोक्षम न, अब कह रहे हैं भगवान मेरी क्या इच्छा है, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाह रहा हूं, ऐसी कामना नहीं है कि मेरी अब वर्तमान समस्या समाधान हो जाए। मोक्ष अवधिम, वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं चाहिए। नचान्यम वृणेहम, और भक्ति के पालन से नाना प्रकार से जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं उसकी भी कामना नहीं, केवल एक ही इच्छा है, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा में मनसी आविरस्ताम किम अन्यई, कि निरंतर मन में आपके इस गोपाल रूप का स्वरूप निरंतर छाया रहे, आपकी ये छवि बनी रहे मेरे मन में। गोपाल बालम सदा में मनसी आविरस्तम किम अन्यई, और कोई कामना नहीं है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में किस प्रकार की कामना करनी चाहिए उसका ये उदाहरण दे रहे हैं। ये बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत श्रेष्ठ स्तर का उदाहरण है, और इसलिए महाप्रभु ने कहा है न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा। तो हमको लगता है ये आगे न क्यों जोड़ दिया है, बाकी सब ठीक है श्लोक, एक न हटा दो तो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से अपना कई कई जीवन निकला है, तो वो न जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है और लगता है कि क्या ये सीरियस प्रार्थना है, ऐसा वास्तव में कोई प्रार्थना कर सकता है क्या, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है। और साधकों के बीच प्रश्न करेंगे तो कहेंगे पता नहीं यार, मुझे भी पता नहीं क्यों किया ऐसा, तो दूसरे साधकों को पूछ के कोई लाभ नहीं। ये महाप्रभु ने उत्कृष्ट जो स्तर है उसका वर्णन कर दिया है। तो इसलिए सदा में मनस्या विरस्तम किम अन्यई, और क्या इच्छा करूं, और हमको पूछो तो हम बड़ा लिस्ट दे देंगे कि मन्यई क्या बात करते हो, मैं बताऊं क्या कि मन्यई बहुत कुछ है मेरे पास। तो लेकिन उन सब इच्छाओं को त्याग कर वो कह रहे मुझे बस यही चाहिए, न मोक्ष अवधिम वा, मुझे वैकुंठ भी नहीं जाना कह रहे हैं। ये भी बड़ा डरावना है, क्योंकि हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं और कई बार मन में एक विचार होता है चलो भाई थोड़े समय निकाल दो और उसके बाद भगवत धाम चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, और यहां कह रहे मोक्ष अवधिम वा, वैकुंठ भी नहीं जाऊंगा चलेगा। प्रभुपाद ने भवानंद प्रभु से एक बार पूछा तुम्हारा नाम है उसका अर्थ क्या है भवानंद, उन्होंने कहा जो कृष्ण के भाव में विभोर हो जाए और उसमें आनंद ले। तो प्रभुपाद ने वो भाव आनंद हो जाता था, वो भाव नहीं है भव आनंद है। तो बोले क्या अर्थ है फिर, तो प्रभुपाद ने कहा जो भव अर्थात भौतिक जगत में आनंद ले। तो बोले बाप रे कैसा नाम दिया है, ये आध्यात्मिक नाम है क्या नाम है, तो इसका अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा देखो भगवत धाम में हर प्रकार की लीला संभव है, लेकिन जो भौतिक जगत के तड़पते हुए जीवों को मुक्त करने की लीला है प्रचार के माध्यम से, वो केवल इस भव सागर में ही संभव है, भौतिक जगत में ही संभव है। इसलिए जो भगवान नाम का प्रचार करने में और जीवों को मुक्त करने में आनंद ले, महाप्रभु के संकीर्तन मिशन से जोड़ने के लिए जो सक्रिय सहभाग दे और उसमें आनंद ले, वो आनंद को कहते हैं भव आनंद। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। यहां पर हमको ये याद करा रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्ष अवधिम हुआ। तो लास्ट लाइन में कह दिया सदा में मनसी आविरस्तम गोपाल बालम, अर्थात गोपाल का स्वरूप मेरे मन में बना रहे। तो अर्थात दूर से हमको गोपाल का एक दृश्य दिखा दिया, अब वो कैमरा को पास ला रहे हैं क्लोजअप कि वो गोपाल बालम क्या है कि नहीं। क्लोजअप होता है ना, पहले दूर से दिखाते हैं फिर क्लोज शॉट लेते हैं, धीरे धीरे वो क्लोजअप आने लगता है जूम। तो अब जूम कर रहे हैं पांचवें श्लोक में, क्या कह रहे हैं, इदं ते मुखं भोजं अत्यंत नीलैर् वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्ताम् अलं लक्ष्यलाभै। तो गोपाल की छवि मन में हो, लेकिन वो किस तरह की छवि, अब वो और निकट से बता रहे हैं। इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलैर, जो अत्यंत नील वर्ण है, वृतम कुंतलय अर्थात जिनके केश स्निग्ध घुंघराले काले घने बड़े आकर्षक, तो ऐसे केश वृतम कुंतलय। गोपियां कहती हैं अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटियुगायते त्वाम अपश्यताम कुतिल कुंटलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम। तो गोपियां ये प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान जब आप गोचारण के लिए चले जाते हो और एक एक क्षण हमको एक युग की भांति लगता है, अटत यद भवान भ्रमण करते हुए भटकते हुए आप चले गए वन में सुबह सुबह, अहनि काननम वन में घूम रहे हो, त्रुटि युगायते एक त्रुटि एक क्षण भी युग की तरह लगता है, क्यों, त्वाम अपश्यताम आपको हम देख नहीं पाते, और आपके स्वरूप में भी विशेष रूप से कुतिल कुंटलम आपके काले घने घुंघराले बालों का दर्शन कब होगा, जो एक सुंदर पद्म कोश की चारों तरफ बैठे हुए भौरों की तरह दिखे। कुटिल कुंटलम श्रीमुखम चते, वो मुख का दर्शन कब होगा। तो एक कुंतल शब्द का अर्थ है घुंघराले बाल, काले घने दिव्य घुंघराले बाल। एक मेरे मित्र हैं राजेंद्र अग्रवाल, वो कई वर्ष पहले मेरे को एक सत्य घटना बताए थे कि लखनऊ में एक मुशायरा चल रहा था, मुशायरा अर्थात जहां शेरो शायरी होती है, और एक वहां पे जो आयोजक थे उन्होंने इस तरह से एक नियम बनाया था कि आज जो भी शेर सुनाएगा, वहां मुसलमान लोग ज्यादा थे, तो कहा कि अंत में वो कहेगा कि काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। आपको ये कहना ही है, अगर इसमें भाग लेना है तो आपको अंत में ये लाइन कहना ही है, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो उस समय फिरक गोरखपुरी नाम के एक शायर थे, वैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन इसमें शेरो शायरी में इंटरेस्ट था तो काफी वो इसमें सब भाग लेते थे, और कृष्ण के भक्त थे। तो बोले यार ये तो ठीक बात नहीं है कि अंत में इस तरह से मैं कह दूं, अपराध हो जाएगा। तो उन्होंने विचार किया क्या करूं, और उन्होंने कृष्ण को रखकर एडजस्ट करके एक शेर लिख दिया। और वो उनका जब टर्न आया तो उठ के कहने लगे कि लाम गेशु है मानिंद मेरे घनश्याम के, काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। समझे क्या कुछ? तो वास्तव में उन्होंने क्या लिख दिया कि उर्दू में कुछ अक्षर होते हैं जो सीधा लिखे जाते हैं और कुछ अक्षर यूं घुमा के लिखते हैं। उर्दू में देखा होगा कुछ अक्षर ऐसे ऐसे घूमते हैं, हमको समझता नहीं हो क्या है लेकिन घूमते हैं, घुंघराले हैं, तो उसको लाम कहते हैं। उन अक्षरों को लाम कहा जाता है। तो लिख दिए कि लाम गेशु हैं, अर्थात जो केश हैं वो घुंघराले हैं मानिंद मेरे घनश्याम के, जो मेरे घनश्याम के जो बाल हैं, जो केश हैं वो क्या है, लाम है अर्थात घुंघराले हैं। लाम केशु है मानिंद मेरे घनश्याम के, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। जो कृष्ण के घुंघराले बालों के दास नहीं है वो है काफिर। तो इस तरह से उन्होंने एडजस्ट करके लिख दिया उसको। तो ये मैं उस कलकत्ता में कुछ दिन पहले सुना रहा था, उस समय ये याद आया, बहुत साल पहले ये मैं सुना था उनसे कि वृत्तम कुंतलई, अर्थात काले घने घुंघराले बाल, स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, और बारंबार यशोदा माई के द्वारा चुंबित होने पर मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, और कृष्ण के जो होंठ भी लाल लाल दिख रहे थे, और मनसी आविरस्तम। तो ये छवि वास्तव में, अब उस छवि का विस्तृत वर्णन इस श्लोक में कह रहे हैं, अलम लक्ष्य लाभ है, और कुछ नहीं चाहिए, अर्थात इस बात को कंफर्म कर रहे हैं जो चौथे श्लोक में कह दिया। तो आगे उस बात को और दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि वास्तव में गोपाल बालम, वो कैसा गोपाल बालम, इस तरह का रूप मेरे मन में निरंतर बना रहे। अब इस तरह ये वर्णन करने के पश्चात अब अगले दो श्लोकों में अपने उद्धार की वो बात ला रहे हैं कि हे भगवान, मैं बहुत दुख के सागर में निमग्न हूं, कृपा करके उद्धार कीजिए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद प्रभो दुख जलाभिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्या ते दिनम बतानो गृहणे शमामग्यम मे दक्षि दृश्य। तो बहुत प्रकार से संबोधन हुआ है, हे देव अर्थात नियंत्रक, क्योंकि अगर गोपाल कहे अरे मैं तो छोटा सा गोपाल हूं, बालक हूं, माता स्वयं मुझे बांध के रख दी है तो मैं क्या कर सकता हूं, कहते नहीं नमो देव, आप बहुत बड़े देवताओं के देवता हो, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी दामोदर हो अर्थात भक्त की प्रार्थना को विफल होने नहीं दोगे, भक्तों की प्रार्थना को सुनते हो, उसके वशीभूत हो जाते हो, और दूसरों किसी अन्य व्यक्ति से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं, किसी को मुक्त कराने की शक्ति आपके अंदर है, क्योंकि आप क्या हो, अनंत हो। तो भगवान कहेंगे लेकिन मुझे भगवत धाम से इतनी दूर से आना पड़ेगा तुमको बचाने के लिए, नहीं नहीं विष्णु हो, सर्वव्यापी हो, सब जगह हो, यहीं अंदर बैठे हो, तुरंत प्रकट हो जाओगे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध संतुष्ट हो जाइए प्रभो। तो भगवान कहेंगे लेकिन मुझे बाकी देवताओं को कंसल्ट करना पड़ेगा तुमको मुक्त करने के पहले, आप प्रभु हो अर्थात कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति प्रभु, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति से कोई जिसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान हिरण्यकशिपु को, लेकिन बाद में नरसिंह देव ने चार्जशीट कर दिया उनको कि क्यों दिया, इस तरह का वरदान किससे पूछ के दिया, भविष्य में जो है अपने चार सर का बुद्धि थोड़ा और लगाओ, और मुझे बुला लिया करो, समझे ना, मेरा सेलफोन नंबर है कि नहीं। इस तरह से नरसिंह देव को अंत में ये बोलना पड़ा ब्रह्मा जी को, अर्थात बड़े से बड़े देवता को भी भगवान की अनुमति लेनी पड़ती है कि नहीं। एक तो होता है लॉ के हिसाब से चलना, और लॉ के हिसाब से कोई नहीं बैठता रूल्स में, और हमको रूल तोड़ के किसी पर कुछ करना पड़ता है तो इंचार्ज को पूछना पड़ता है ना, अरे प्रसाद कूपन नहीं है फिर भी चाहिए, भूखे हो, तो इंचार्ज को पूछूंगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो, हो सकता है आप कहो कि मैं बिल्कुल पतित हूं, थर्ड क्लास हूं, कृपा के योग्य नहीं हूं, और मुक्त करना है तो बिल्कुल ये एक्सेप्शनल केस होगा, तो मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा कि ऐसे गए गुजरे को मुक्त कर सकता हूं कि नहीं। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, ये डिसीजन ये निर्णय आप स्वयं ले सकते हो, क्योंकि आप प्रभु हो। प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम, भले अयोग्य हूं लेकिन दुख के सागर में डूब रहा हूं, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। गृहानेश माम अज्ञम, और मैं बहुत अज्ञ भी हूं, मूर्ख भी हूं, ठीक प्रकार जानता नहीं प्रार्थना कैसे करूं, आपका आश्रय कैसे लूं, लेकिन फिर भी मेरी आकांक्षा बहुत महान है, अक्षी दृश्य, कृपा करके आप मेरे समक्ष प्रकट ही हो जाइए। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर आगे ये प्रार्थना सुन के भगवान विचार कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई मैं मुक्त तो कर सकता हूं, लेकिन क्या है उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है मुक्त करने का, अगर कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगा फिर मैं मुक्त कर सकता हूं, लेकिन बहुत ही गया गुजरा हो और बहुत ही पतित हो तो फिर बहुत कठिन है मुझे मुक्त करना, तो इस तरह से मुझे आपको मुक्त करने में बहुत कठिनाई जाएगी। तो यहां कह रहे हैं आगे, देखो भगवान, ऐसा नहीं कि इतिहास में आपने गए गुजरे लोगों का उद्धार नहीं किया है, मैं कई उदाहरण जानता हूं जहां आपने कई ऐसे नशे में धुत नाना प्रकार के अपराध करते हुए ऐसे लोगों का भी उद्धार करते हुए मैंने देखा है, और उसका मैं उदाहरण आपको दे दूं, वो क्या है, कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैवयद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह। तो कह रहे हैं कि कुबेर के जो पुत्र थे उसका क्या, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या कोई तपस्या की थी, कोई साधना किया था, सोलामाला किया था, हाँ, कुबेर आत्मजो दारू पी के पागल थे और नृत्य कर रहे थे, वो भी मंदाकिनी गंगा में नंगा, देखो कुबेर आत्मजो, और उनको भी आपने दे दिया भक्ति। कुबेर आत्मा जाओ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत्, इस तरह बद्ध थे, त्वया मोचिता, और मैं तो यहां चाय पीना भी छोड़ दिया हूं और दूसरे नशाओं की क्या बात है, त्वया मोचिता भक्ति भाजव कृतौ च, तो दारू पी के तांडव करते हुए व्यक्ति को अपने भक्ति दे दिया, तो मैं जब प्रेम पूर्वक चार नियम पालन करके जब सोला माला कर रहा हूं तो मुझे भक्ति क्यों नहीं देते। त्वया मोचितौ भक्ति भाजव कृतौ च, अर्थात जब उनको भक्ति प्राप्त हो सकती है तो मेरे जीवन में भी अवश्य आशा की किरण है। त्वया मोचितौ, केवल मुक्त नहीं करते, भक्ति भाजव, भक्ति भी दे देते हो, जो कि बहुत दुर्लभ है। वैसा ही तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ, क्योंकि भक्ति के भी कई कई तरीके हो सकते हैं। प्रोडक्ट है घी, तो घी बोलोगे तो अलग अलग टाइप का घी होगा, एक डायनामिक्स का घी होगा जो यहां ब्रज में अलग घी निकलेगा, दिल्ली में एक टाइप का घी आएगा, तो कौन सा घी। तो वैसे ही भक्ति में कई कई टाइप होंगे, बोले तथा प्रेम भक्ति, वो जो कुबेर के जो दो पुत्र थे उनको कैसे आपने भक्ति दी, तो वैसे मैं भी बद्धावस्था में हूं और इसलिए आप कृपा करके वैसी ही प्रेम भक्ति मुझे भी दीजिए। स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे, मोक्ष मत दीजिए, ग्रहो में स्थित दामोदरेह, अगर मोक्ष ही चाहिए तो दामोदर के पास थोड़ी मैं आऊंगा। आपके दामोदर स्वरूप का मैं वर्णन कर रहा हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं भक्ति की कामना से, तो भक्ति की याचना मैं कर रहा हूं। तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। इस तरह से हमें दामोदर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भले हम अयोग्य हों, लेकिन हे दामोदर कृपा करके मेरे हृदय के अनर्थों को दूर करें और अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। और आज ही के दिन ये लीला हुई थी, तो इस दिन जो प्रार्थना करेगा दामोदर भगवान से और हृदय के अंतःकरण से प्रामाणिक इच्छा से, तवश्य भगवान इस बात को सुनेंगे। अब अंत में कंक्लूजन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उस रस्सी उस रज्जू को प्रणाम है। नमस्ते स्तु दामने स्फुर दीप्ति दामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो हे भगवान, हे दामोदर, स्फुरत दीप्ति दामने उस रज्जू को प्रणाम है जो कि संपूर्ण विश्व जिस नाभि में समा गया, उस नाभि को और उस उदर को जिस रज्जू ने धारण किया और बांध दिया। नमस्तेस्तु दामने उस रस्सी को प्रणाम है। त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दामने और आपके उदर को भी प्रणाम है। और अब अंत में वो कह रहे हैं कि अब मैंने ये रचना लिख दी है, इस रचना में जो कोई भी कमी हो गई, जैसे जो किसी को हम पिटिशन देते हैं तो पिटिशन जिस तरह से देते हैं, अगर उसमें ठीक तरह से कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, कुछ गलत लिख दिया, तो पिटिशन रिजेक्ट हो जाता है। अरे ये क्यों लिख दिया तुमने, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं था, या यहां पर आपको हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था, यहां पे करना चाहिए था, गलत जगह साइन कर दिया, डेट गलत डाल दिया, ये कर, ऐसा करके रिजेक्ट हो जाता है। फिर आओ, अगले हफ्ते आओ, इस तरह से पिटिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो सात श्लोक लिखने के बाद सत्यव्रत मुनि विचार कर रहे हैं कि मैं तो श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं और ये भगवान के प्रति याचना करते समय कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, इसके कारण कहीं मेरा पूरा पिटिशन रिजेक्ट ना हो जाए, है कि नहीं। तो इसलिए रिजेक्ट होने से बचाने के लिए पिटिशन के साथ साथ थोड़ा कुछ अगर दे दें साथ में, है कि नहीं। समझते हैं ना, भारत में तो सभी लोग समझते हैं। सरकारी दफ्तर में जाके प्रसाद देना, तो प्रसाद के बहुत सारे तात्पर्य होते हैं। एक होता है प्रसाद, एक होता है महाप्रसाद। प्रसाद ऊपर से देते, महाप्रसाद नीचे से देते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो कोई भी कमी रह गई हो, अब इसको कैसे पूरा करें, तो चलो अंत में मैं कुछ ऐसी बात बता देता हूं जिससे कि कोई भी गलती त्रुटि हो गई हो वो सब क्षमा हो जाएगा। और वो है कृष्ण का वीकनेस। वो क्या है? नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। बाकी मैंने जो कहा वो सही हो ना हो, ये तो सही है कि नहीं। राधिकायै त्वदीय प्रियायै कि राधा रानी आपको बहुत प्रिय है, इस बात को आप मना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो मान लो मेरे पिटिशन को, स्वीकार कर लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दस प्रूव दैट पिटिशन इज बोनाफाइड, कि एक स्टेटमेंट के साथ कह दिया नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, और फिर अंत में एक और कह दिया, एक तो राधा रानी बहुत प्रिय है और दूसरा रासलीला बहुत प्रिय है, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो ये दोनों लास्ट में जो उन्होंने जोड़ दिया वो बिल्कुल उनका केस सील हो गया कि आगे रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये लास्ट में ये सब दो फैक्टर जोड़ के जब अर्जी डाल दी, तो जब खोलते हैं तो ऊपर बिल्कुल ये सब देखते हैं, कहते अरे बाप रे, अभी राधा रानी का नाम आ गया, ये सब आ गया, तो फिर कौन है यार ये, देखते हैं इसको उद्धार कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ये भी कहते हैं कि जब भोजन जब परोसा जाता है तो जो मीठा होता है वो हमेशा लास्ट में दिया जाता है, स्वीट्स आर सर्व्ड इन द एंड। तो उसी प्रकार ये पूरा जो प्रार्थना है दामोदर अष्टक बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत पौष्टिक भोजन की तरह है, लेकिन जो स्वीट्स है वो लास्ट के लिए रखा गया है। और वो लास्ट दो लाइन है वो स्वीट डिश है, डेजर्ट है, नमो राधिकायै और नमो अनंत लीलाए। और इस तरह से राधा रानी का नाम, गोपियों का नाम मीठा मीठे की तरह अंत में परोस दिया गया है, जिससे कि पूरा भोजन संपन्न हो जाए और हम लोग कहें कि बस संतुष्ट हो गए। इस तरह से ये दामोदर अष्टक 8 श्लोकों में सत्यव्रत मुनि जी ने बहुत सुंदर प्रकार से रचना की। तो श्री श्री राधा दामोदर जी और प्रभुपाद ने जो पार्टी स्टार्ट किया, संकीर्तन पार्टी, राधा दामोदर ट्रेवलिंग संकीर्तन, जो गीता नगरी में है भी, वो बहुत सुंदर डीटीज राधा दामोदर जी, जो मेटल डीटीज में इतने सुंदर डीटीज बहुत कम ही देखे जाते हैं, इतना सुंदर उनका फीचर्स है। तो वास्तव में वो विष्णुजन महाराज उन डीटीज को रखकर वो बस में चलते थे तो डीटीज हिलते थे। तो पूछा कि अब डीटीज हिलते हैं तो क्या करें हम, तो प्रभुपाद ने कहा रस्सी से बांध के रखो उसको, तो हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। तो रस्सी से बांध दिया, तो प्रभुपाद ने कहा अभी बांध ही दिए तो इसका नाम दे दो राधा दामोदर। तो तब से वो राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी हो गया वो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने संपूर्ण इस्कॉन की योजना भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने की संपूर्ण योजना श्री श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन सेवा कुंज से ही उद्घाटन किया। तो इसलिए दामोदर भगवान का बहुत महत्व है। और आज जो इस दिन दिवाली के दिन ही ये लीला वास्तव में भगवान ने संपन्न की, हम भगवान से सत्यव्रत मुनि के पद चिन्हों पर चलते हुए यही सब प्रार्थना करते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षा वधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशाद अपिह। दामोदर का जो दीप दिखाते समय ये प्रार्थना करें, परामृष्टम अत्यंत तो, हे भगवान जिस तरह यशोदा माई आपको भागते भागते हरा दी उससे आपको आनंद हुआ, वैसे ही भक्तों के संग में दूसरे भक्त मुझसे आगे बढ़ जाए और मैं दूसरों की सेवा करूं, और किस तरह दूसरों के आनंद में मैं आनंद लूं, इस तरह की भावना आप मुझे प्रदान कीजिए। अपने प्रयास से तो यह संभव नहीं है, आप विशेष कृपा करोगे तब जाके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो सकते हैं, अन्यथा कोटि कोटि जीवों में, कोटि कोटि जीवन में मैंने केवल नाना प्रकार के इंद्रिय विषय भोग के ही रचनाएं की, इसलिए स्वयं अपनी शक्ति से संभव नहीं, आपकी शक्ति आवश्यक है। आपका हस्ताक्षेप और आपकी कृपा का हस्ताक्षेप होगा तब जाके ये संभव है। और इस तरह की प्रार्थना कि मैं भक्तों के संग में भक्तों के प्रति अपराध न करूं और उनके प्रति सेवा भाव धारण करूं, और इस तरह भक्तों की सेवा करते हुए यदि मैं भक्तों को संतुष्ट कर पाया तभी दामोदर भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और अब यहां 13 कदम पर श्रील रूप गोस्वामी पाद के इस सुंदर भजन कुटीर के निकट, जहां नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु की रचना इत्यादि इन्हीं सब स्थलियों में हुई थी, अब हम श्यामानंद प्रभु से रूप गोस्वामी पाद और 13 कदम के विषय में, अब नंदगांव के विषय में जो कुछ भी बातें हैं, आज पूरा दिन हमको श्यामानंद प्रभु इसका ज्ञान देंगे। श्री प्रभुपाद की, ऐसे मैंने बताया स्वीट लास्ट में सर्व होता है, तभी हम स्वीट सर्व करेंगे।